नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर, विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। और बिहार में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज शाम भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत करने की घोषणा की है। कोविड महामारी के दौरान डोमिनिका को राहत उपलब्ध कराने और दोनों देशों की साझेदारी मजबूत करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट।
डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन गयाना में इस महीने की 19 से 21 तारीख तक आयोजित होने वाले कैरेबियाई समुदाय और साझा बाजार शिखर सम्मेलन में ये सम्मान प्रदान करेंगी। डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार भारत ने कोविड महामारी के दौरान डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन की 70,000 डोज की आपूर्ति की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में भी डोमिनिका की सहायता की है। डोमिनिका में जलवायु समायोजी भवन निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने में भी प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्किरिट ने कहा कि ये सम्मान डोमिनिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एकजुटता के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है और ये सम्मान प्रदान करना डोमिनिका के लिए गौरव की बात है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
इस सम्मान की स्वीकृति में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन, अभू राजनीतिक संघर्ष की वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग पर बल दिया। उन्होंने डोमिनिका और कैरेबियाई लोगों के लिए काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सभा और रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने गिरिडीह में जनसभा को संबोधित किया। बाद में उनका गांडे और बोकारो में तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद, बोकारो और बेरवो में चुनावी रैली करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारठ, दुमका और बोकारो में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राजद, आजसू और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 20 तारीख को होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने राज्य में घुसपैठियों को आने दिया।
कांग्रेस नेतृत्व की चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे माले के लोग हो, ये सब के सब लूट खसोट करने के लिए आए हैं। ये भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ।
वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के सारठ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार महागठबंधन बन करके एक मजबूत अलायंस बना करके जो कार्य योजना तैयार किया है, इस राज से भारतीय जनता पार्टी का जड़ को उखाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेज होने के साथ ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा और आरएसएस पर वनवासी शब्द के इस्तेमाल को लेकर हमला बोला। राहुल गांधी आज नांदेड़ में एक और रैली को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार निफाड़, दिंडोरी, सिन्नर और कोपरगांव में रैलियां करेंगे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार पुणे जिले में प्रचार कर रहे हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे नेवासा और छत्रपति संभाजीनगर में रैलियां करेंगे। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की हमारी श्रृंखला में आइए अब जानते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के भोकर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। ये चुनाव हाल में भाजपा में शामिल हुए अशोक चव्हाण के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा हो सकती है। उनकी बेटी श्रीजया चव्हाण भाजपा उम्मीदवार के रूप में इस सीट से मैदान में है। एक रिपोर्ट।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण भोकर से राजनीति की शुरुआत कर रही है। भोकर श्रीजया के दादा शंकरराव चव्हाण के कार्यकाल के दौरान से चव्हाण परिवार का पारंपरिक गढ़ रहा है। अब हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अशोक चव्हाण अपनी बेटी श्रीजया की उम्मीदवारी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस ने द्रौपदी पाटिल कोंडेकर को मैदान में उतारा है, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने रमेश राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है। भोकर निर्वाचन क्षेत्र में राज्य में सबसे ज्यादा 140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। श्रीलंका में नई संसद के लिए 13,421 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में 1,70,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार संसदीय चुनाव में कुल 8,800 उम्मीदवार मैदान में हैं।
राष्ट्रपति चुनाव के कुछ ही सप्ताह बाद श्रीलंका के मतदाता आज द्वीप राष्ट्र में 10वीं संसद का चुनाव करने के लिए मतदान कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 30-50% तक रहा। शुरुआती मतदाताओं में राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायक, प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनियम रसूरिया, पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और एसजेवी नेता सजित प्रेमदासा शामिल थे। चुनाव अब तक शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा है और किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है। मतदान समाप्त होने के बाद शाम 4:15 बजे मतगणना शुरू की जाएगी। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
अमेरिका में माइक जॉनसन संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सदस्यों की एक बैठक में उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। लुसियाना से रिपब्लिकन सांसद को अध्यक्ष पद के लिए जनवरी के शुरू में 435 सदस्यों के सदन में बहुमत का समर्थन हासिल करना होगा। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले का विषय है विकसित भारत एट 2047। इस वर्ष झारखंड राज्य पर विशेष फोकस रहेगा, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य इस कार्यक्रम में विभिन्न देश हिस्सा लेंगे। इस वर्ष 11 देश अंतर्राष्ट्रीय मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ये मेला आज से पहले 5 दिन व्यापारियों के लिए खुला रहेगा। 18 नवंबर से 27 नवंबर तक ये आम जनता के लिए खुला रहेगा। मेले का उद्घाटन करते हुए पीयूष गोयल ने इस तरह के आयोजन वर्ष में 2 बार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन का विस्तार करने और इसे अखिल भारतीय संगठन बनाने पर विचार कर रही है। मेले की अधिक जानकारी के लिए हम आपको व्यापार मेले में के लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता सकलेन अख्तर मौजूद हैं। जी सकलेन, व्यापार मेले के उद्घाटन के बारे में आपके पास क्या महत्वपूर्ण जानकारी है?
लवलीन, इस वर्ष इस मेले में देश विदेश के 3,000 से ज्यादा प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। हमने सुबह से देखा कि पहले दिन काफी ज्यादा लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। जो कुछ विदेशी प्रदर्शकों से जब हमने बातचीत की तो जो पहली बार आए हैं वो भी इस मेले को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों विभागों भी अपनी अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं। जैसे भारतीय रेलवे ने अपनी प्रदर्शनी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिखाई है, वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी प्रदर्शनी में एक नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। वहीं एक और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की प्रदर्शनी में अलग अलग तरह के खनिज प्रदर्शित किए गए हैं। तो इस तरह और इसके अतिरिक्त जो पहला दिन है, पहले दिन टिकट महंगी है, उसके बावजूद भी लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और मेले को देख रहे हैं। और टिकट के दाम जो है वो आम दिनों में 80 रुपए व्यस्कों के लिए और 40 रुपए बच्चों के लिए रखे गए हैं। आगंतुक जो है सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक भारत मंडपम के गेट नंबर 3, 5, 6 और 10 से मेले में प्रवेश कर सकते हैं।
धन्यवाद सकलेन इस जानकारी के लिए। इस मेले में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय के पवेलियन का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बात करते हुए श्री रेड्डी ने मिनरल्स से माइलस्टोन नामक प्रदर्शनी के महत्व पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आईटीपीओ महाप्रबंधक शंकर नंद भारती ने कहा कि इस वर्ष के मेले का विषय विकसित भारत एट 2047 और झारखंड पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इस बार हम पिछले बार के मेले की तुलना में अधिक क्षेत्रफल में इसको आयोजित कर रहे हैं। इस व्यापार मेले में बिहार और उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट के तौर पे हैं, साथ ही झारखंड फोकस स्टेट के तौर पे आ रहा है। इन स्टेट्स के अलावा 33 अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, 49 भारत सरकार डिपार्टमेंट हों या PSUs हों, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 11 विदेशी कंट्रीज, उनका भी पार्टिसिपेशन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई जाएंगे, जहां वो जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिला प्रशासन कल ऐतिहासिक चौगांव मैदान में विशाल जनजातीय उत्सव का आयोजन कर रहा है। ये उत्सव जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार रविन्द्र कुमार जेना ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को सामूहिक स्वच्छता शपथ दिलाई। इस दौरान आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, अतिरिक्त महानिदेशक एल मधुनाग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में स्वच्छता की शपथ ली। राजस्थान पुलिस ने आज देउली उनियारा सीट से विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कल समरावता गांव में मतदान के दौरान उप संभागीय अधिकारी पर हमले का आरोप है। दिल्ली एनसीआर में आज तीसरे पहर वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 पर पहुंच गया। शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता की स्थिति सबसे खराब रही। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान प्रदूषण के स्तर पर चिंता प्रकट की। उन्होंने बताया कि शहर में GRAP 3 के प्रतिबंध फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे।
दिल्ली के ऊपर एक लेयर बनी है स्मॉग की, और उसकी वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वायुमंडल में डिस्पर्स होने की वजह से सतह की तरह बने हुए हैं, लेकिन आज से हवा की गति में सुधार होने का अनुमान है।
इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर शहर में प्रदूषण स्तर बढ़ाने का आरोप लगाया है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 वर्ष में एक भी पर्यावरणीय योजना प्रस्तुत नहीं की है।
दिल्ली की स्थिति बद से बदतर इसलिए हो रही है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कभी भी ठोस नीति से काम नहीं किया। इनके पास कोई नीति है ही नहीं। पिछले 10 सालों में एक भी एनवायरमेंटल प्लान इन्होंने पेश नहीं किया दिल्ली की जनता के सामने। और दिल्ली में आज जो पोल्यूशन की स्थिति है, ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये 12 महीने की प्रॉब्लम है।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी आम आदमी पार्टी पर शहर की वायु गुणवत्ता खराब स्तर तक पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब तक हुई बैठकें किसी तरह काम की साबित नहीं हुई हैं। बिहार के राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला आज थाईलैंड से होगा। मैच शाम 4:45 से खेला जाएगा। आज के अन्य मैचों में दक्षिण कोरिया का मुकाबला मलेशिया से और जापान का चीन से लगभग इसी समय शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री का स्मरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू और बिहार में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज शाम भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।